लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं महामारी कोरोना वायरस और टीकाकरण से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। अब तक 18 करोड़ 97 लाख 50 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 40 लाख 83 हजार से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। दुनिया में 25.6% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है। 3.51 बिलियन खुराकें विश्व स्तर पर दी गई हैं और 29.67 मिलियन अब प्रत्येक दिन लगाई जा रही है। कम आय वाले देशों में केवल 1% लोगों को ही कम से कम एक खुराक मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक टीकाकरण योजना की अगुवाई करने और कोविड-19 से पीड़ित विकासशील देशों को कर्ज राहत के दायरे में लाने का आग्रह किया है। महासचिव गुटेरेस ने 9 जुलाई शुक्रवार को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधनों का पुख्ता इंतजाम किए जाने की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इटली के वेनिस शहर में G20 समूह के वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसे UN महासचिव ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद में भरोसा बहाल करने के लिए वैक्सीनों, आर्थिक पुनर्बहाली और जलवायु वित्त पोषण के वादे को पूरा किए जाने की जरूरत है। कोरोना वायरस के नए वेरियंट के सामने आने और वैश्विक स्तर पर टीकाकरण में खाई गहरी होने पर चिंता जताई गई है। इस महामारी का अंत करने और विश्व की 70% आबादी के टीकाकरण के लिए कम से कम 11 अरब खुराकों की आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए एक वैश्विक वैक्सीन योजना की अपील की गई है, जिससे टीकों के उत्पादन को दोगुना करने और कोवैक्स पहल के जरिए उनके न्यायसंगत वितरण में मदद मिलने की उम्मीद है। UN महासचिव ने कर्ज चुकाने में मुश्किलों का सामना कर रहे विकासशील देशों को राहत दिए जाने और 50 अरब डॉलर के एक नए रोडमैप को समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया है। UN प्रमुख ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सम्मेलन COP26 से पहले कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए पुख्ता कार्रवाई पर बल दिया है। उन्होंने G20 देशों से सदी के मध्य तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने और जलवायु कार्रवाई के लिए 100 अरब डॉलर के वादे को साकार किए जाने का आह्वान किया है। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाना और विकासशील देशों में अनुकूलन कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाना है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण मौतों के शिकार हुए लोगों की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो गई है, जो कि एक अन्य घातक और दुर्भाग्यपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस पड़ाव ने इस तत्काल जरूरत को और ज्यादा रेखांकित कर दिया है। विश्व को महामारी पर जल्द से जल्द पूरी तरह काबू पाने के लिए एक वैश्विक वैक्सीन योजना लागू करनी होगी। अंतोनियो गुटेरेस ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि कोविड-19 का जितना फैलाव हो रहा है, उसकी रफ्तार से उसके नए प्रकार यानी वेरियंट सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ की संक्रमण दर तो बहुत ज्यादा है, जो बहुत जानलेवा है, और उनमें मौजूदा वैक्सीनों को बेअसर करने की क्षमता मौजूद होने का भी अंदेशा है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या बुधवार देर शाम 40 लाख से ज्यादा हो गई, जो कि एक अन्य घातक और दुर्भाग्यपूर्ण पड़ाव है। UN प्रमुख ने कहा कि हम में से बहुत से लोग इस नुकसान को सीधे तौर पर समझते हैं और इसकी तकलीफ भी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक वैक्सीन हमें उम्मीद की किरणें दिखाती है, मगर ज्यादातर दुनिया वैक्सीन की उपलब्धता में अभी बहुत पीछे है। ये महामारी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अगर इस वायरस को जंगल की आग की तरह यूं ही फैलने दिया गया तो लाखों अन्य जिंदगियां भी जोखिम के दायरे में होंगी। उधर WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गैब्रियसस ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के वेरिएंट यानी रूप इस समय वैक्सीनों के खिलाफ दौड़ में आगे हैं। उन्होंने इस चिंताजनक स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से वैक्सीन के समान उत्पादन और वितरण की कमी को जिम्मेदार ठहराया।
वैक्सीन नेशनलिज्म वेयर अ हैंडफुल ऑफ नेशंस हैव टेकन द लायंस शेयर इज मोरली इनडिफेंसिबल।
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि ऐसी वैक्सीन राष्ट्रवाद की स्थिति जहां कुछ गिने चुने देशों ने शेयर का हिस्सा यानी वैक्सीन का जरूरत व अनुपात से ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया हो, ये अपने आप में नैतिक रूप से सही नहीं है। ये साथ ही एक ऐसे सांस वायरस के खिलाफ लड़ाई में बेअसर सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति है जो बहुत जल्दी जल्दी और तेजी से अपने रूप बदल रहा है और नए मेजबानों को संक्रमित करने में बढ़त के साथ कामयाबी हासिल कर रहा है। डॉक्टर टेड्रोस के शब्द। उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि नैतिक, महामारी विज्ञान और आर्थिक नजरिए से बिल्कुल अभी वो समय है जब पूरे विश्व को एकजुटता दिखानी होगी।
संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार उच्चायुक्त मिशेल बासलेट ने मंगलवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना द्वारा सत्ता का तख्ता पलट करने के साथ जो दौर शुरू हुआ था उसने आम आबादी के खिलाफ चौतरफा हमलों का रूप ले लिया है, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। मिशेल बासलेट ने 6 जुलाई मंगलवार को मानव अधिकार परिषद के 47वें सत्र को संबोधित करते हुए दोहराया कि म्यांमार की स्थिति फरवरी महीने शुरू में नजर आने वाले एक राजनैतिक संकट ने बहुकोणीय मानव अधिकार आपदा का रूप ले लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
म्यांमार में सेना द्वारा इस साल फरवरी में तख्ता पलट किए जाने के बाद से देश में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 2 लाख लोगों को सेना द्वारा हिंसक छापेमारियों के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों के प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने इस सप्ताह मानवाधिकार परिषद के 47वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा,
द सिचुएशन इन म्यांमार हैज इवॉल्वड फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्राइसिस टू अ मल्टीडायमेंशनल ह्यूमन राइट्स कैटास्ट्रोफ। Suffering and violence throughout the country are devastating prospects for sustainable development and raise the possibility of state failure or a broader civil war.
मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट कह रही थी कि हाल के महीनों में म्यांमार में हालात ने एक राजनीतिक संकट से बदलकर बहुकोणीय मानवाधिकार आपदा का रूप ले लिया है। पूरे देश में इस तरह की तबाही, हिंसा और तकलीफों से टिकाऊ विकास प्रक्रिया पर विनाशकारी असर होगा और ऐसे हालात से सरकारी मशीनरी के नाकाम होने या एक व्यापक दायरे वाले गृह युद्ध की संभावना बढ़ती है। UN एजेंसियों का अनुमान है कि म्यांमार में लगभग 60 लाख लोगों को तत्काल और व्यापक खाद्य सहायता की जरूरत है। मौजूदा हालात में चिंता जताई गई है कि वर्ष 2022 की शुरुआत तक लगभग आधी आबादी निर्धनता की चपेट में आ सकती है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
दुखियों की माँ तू,
ओ मेरी माँ,
दलितों की माँ तू,
ओ मेरी माँ,
करुणामय माँ तू,
ओ मेरी माँ,
कल्याणी माँ तू,
ओ मेरी माँ,
तेरी शरण में हम सब आए, आशीष पाने
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। जर्मनी में रिकॉर्ड की बारिश के बाद आई बाढ़ की खबर से दुखी संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार संध्या वेटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन द्वारा जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रांस वॉल्टर श्टाइनमायर के नाम एक तार संदेश प्रेषित कर अपने सामीप्य का प्रदर्शन किया तथा प्रार्थनाओं का आश्वासन प्रदान किया। तार संदेश में संत पापा ने कहा कि नॉर्थ राइन वेस्टफालिया और राइनलैंड पालातिनेत क्षेत्रों में भीषण तूफान और बाढ़ की खबर सुनकर वे गहन रूप से प्रभावित हुए हैं तथा समस्त मृतकों, लापता और घायल लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों को भी वे याद कर रहे हैं जिनकी संपत्ति प्रकृति की शक्ति के कारण क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन उन सभी को दिया जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उन सभी को जो खोज, राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। संत पापा ने सभी पर प्रभु की आशीष, सांत्वना और अनुकंपा का आह्वान किया तथा गहनतम सहानुभूति का प्रदर्शन कर प्रार्थना में जर्मनी की जनता और सरकार के समीप रहने का आश्वासन प्रदान किया। इसी बीच जर्मनी और बेल्जियम में रिकॉर्ड बारिश के बाद नदियों के किनारे टूट जाने से आई बाढ़ का कहर जारी है। अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार अधिकतर मौतें जर्मनी में हुई हैं, हालांकि बेल्जियम में भी कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही बहुत से लोगों के लापता होने की भी खबर मिली है। बाढ़ से जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफालिया और राइनलैंड पालातिनेत प्रांत सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। साथ ही नीदरलैंड में भी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस आपदा का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन और गर्म होता वैश्विक तापमान है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने जलवायु संरक्षण उपायों को तेज करने की जरूरत पर बल दिया। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बैठक के सिलसिले में अमरीका पहुंची जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्कल ने कहा है कि उन्हें इस आपदा से गहरा धक्का लगा है। अपने एक संबोधन में उन्होंने जर्मनी में बाढ़ की स्थिति को तबाही बताया। बाढ़ के कारण अपनी जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की मौत दुखी करने वाली है। मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि हमारी सरकार हर तरह से लोगों की जीवन रक्षा, खतरे को कम करने और इस संकट को दूर करने हेतु हर संभव प्रयास करेगी। जर्मनी के प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए पुलिस, हेलीकॉप्टर और सैकड़ों सैनिकों को तैनात कर दिया गया है, जबकि पश्चिमी जर्मनी में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस इलाके में परिवहन व्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है और संपर्क बाधित हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ इलाके तो इस कदर प्रभावित हुए हैं और कट गए हैं कि अब वहां नाव से पहुंच पाना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियां ऐसे बह रही हैं जैसे वो कागज की हों। पेड़ सर्वत्र गिरे पड़े हैं। ब्रसेल्स और एंटवर्प के बाद बेल्जियम के तीसरे सबसे बड़े शहर लीस को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से अपने घरों की ऊपरी मंजिल अथवा छतों पर जाने का आग्रह किया है। नीदरलैंड से किसी की मौत की खबर नहीं मिली है, लेकिन नदी के किनारे बसे कस्बों और गांवों में हजारों लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। कैथलिक महाधर्माध्यक्ष भरानी कुलंगरा ने नई दिल्ली स्थित लिटिल फ्लावर गिरजाघर के ध्वस्त किए जाने पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि गिरजाघर के ध्वस्त किए जाने से कैथलिक विश्वासियों को गहन धक्का लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गिरजाघर के पुनः निर्माण की अपील के बारे में फरीदाबाद के कैथलिक महाधर्माध्यक्ष कुरियाकोस भरानी कुलंगरा ने उका समाचार से कहा, हमने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह गलत संदेश दे सकता है। उन्होंने कहा, गिरजाघर की जमीन पर हमारे कागजात बिल्कुल सही हैं और अतीत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। इस घटना ने हमारे लोगों को बहुत दुखी किया है जो सदमे की स्थिति में है। लाडो सराय में सीरो मलाबार कलीसिया द्वारा संचालित लिटिल फ्लावर गिरजाघर को 12 जुलाई को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के एक आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। 9 जुलाई को गिरजाघर की सीमा पर एक नोटिस लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि गिरजाघर का निर्माण अवैध जमीन पर किया गया था। 12 जुलाई को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के कर्मचारी पुलिस के साथ आए और उन्होंने गिरजाघर को ध्वस्त कर डाला। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि गिरजाघर को डहाते हुए देखना बहुत निराशाजनक था, विशेष रूप से इसलिए कि DDA ने गिरजाघर के अधिकारियों को अपना रुख स्पष्ट करने का समय नहीं दिया। संपूर्ण भारत के कलीसियाई और राजनैतिक नेताओं ने विध्वंस की निंदा की है। वेरापोली के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ कलाथी परमपिल ने कहा कि उक्त विध्वंस ने देश की धर्म निरपेक्ष प्रकृति पर कलंक लगाया है। इसी प्रकार केरल में जैकोबाइट चर्च के महाधर्माध्यक्ष कुरियाकोस थियोफिलिस और गुवाहाटी के महाधर्माध्यक्ष जॉन मूलाचारा ने भी दिल्ली में गिरजाघर के ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है तथा दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह श्रद्धालुओं की आराधना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गिरजाघर को ध्वस्त किया है जो केंद्रीय सरकार के अधीन है, तथापि उन्होंने मामले में मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। रोम में 15 जुलाई को संपन्न 3 दिवसीय महिला 20 शिखर सम्मेलन में इस बात के प्रति चिंता व्यक्त की गई कि विश्व में कम से कम 1,10,00,000 किशोरियां ऐसी हैं जो फिर कभी स्कूल नहीं लौट पाएंगी। महिला 20 शिखर सम्मेलन के बाद सेव द चिल्ड्रन लोकोपकारी संगठन ने 15 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बच्चों, लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के प्रति ध्यान आकर्षित कराया तथा भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से किशोरियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का विश्व की सरकारों से आग्रह किया। इस बात को रेखांकित किया गया कि महामारी के परिणाम स्वरूप 1,10,00,000 लड़कियों के स्कूल नहीं लौटने का जोखिम है जिसका उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर संभावित विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा प्राप्त करने की संभावना से वंचित किशोरियों को बाल श्रम, विवाह और प्रारंभिक गर्भधारण के शोषण का शिकार बनना पड़ सकता है। यह वह स्थिति है जो विगत वर्ष से और अधिक बिगड़ गई है। सेव द चिल्ड्रन लोकोपकारी संगठन ने इस बात के प्रति भी ध्यान आकर्षित कराया कि संपूर्ण विश्व में उपस्थित निरक्षर लोगों में 59% किशोरियां और युवा महिलाएं हैं, विशेष रूप से अफ्रीका के अवर सहारा क्षेत्र, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं और किशोरियों की शिक्षा स्थिति चिंताजनक निरूपित की गई। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।